स्वामी जी महाराज के साथ बातचीत करने के सत्संग की बैठक में बातचीत चल रही है। स्वर्गाश्रम में पटवृक्ष के नीचे बातचीत हो रही थी। तो प्रश्न उठा है उसमें परमात्मा के याद आने की बात से। तो सांझ महाराज ये सलाह दे रहे हैं कि भाई मरे हुए कुटुंबी जनों की याद आती है और मौजूद परमात्मा को याद करना पड़ता है और उसमें भी सफलता नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? ऐसा सोचो। तो सोचने से साफ विदित होता है कि जिनको हमने अपना माना उनकी याद स्वभाव से आती है, इसलिए ईश्वर विश्वासी साधक जो उनकी स्मृति को जीवन बनाना चाहते हैं, उनकी याद में ही रहना जिनको पसंद है, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको ये भी करना चाहिए कि परमात्मा को अपना मानें, पसंद करें। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भाषा में बातचीत होती है तो यह कहा जाता है कि जहाँ जहाँ हमारा इंटरेस्ट है, अभिरुचि है, वहीं वहीं मन जाकर ठहरता है। इसको तो आपने स्वयं अनुभव किया होगा। जो जो बातें अपने लोगों को रुचिकर लगती हैं, तो रुचिकर बातों में जाकर के मन ठहरता है कुछ समय के लिए, और जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसमें मन नहीं जाता। तो जो पसंद आवे, जो रुचिकर लगे, जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो उसी में जाकर के मन ठहर जाएगा, टिक जाएगा। तो संत महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा को पसंद करना, उनको अपना मानना, यह तो हमारा आपका अपना पुरुषार्थ है, स्वधर्म है। और मेरी उस पसंदगी से उनकी याद स्वभाव से आने लग जाएगी, यह उस पुरुषार्थ का, उस स्वधर्म के पालन का फल है। तो उनको हम पसंद करें यह मेरा स्वधर्म है। उनकी सत्ता को स्वीकार करके उनसे आत्मीय संबंध माने यह हमारा स्वधर्म है। और मेरी इस मान्यता और पसंदगी की मान्यता से उनकी याद आने लग जाए यह स्वधर्म पालन का फल है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो और बात सही है, आपने देखा होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका अनुभव किया है कि सचमुच जो अपना नहीं है और अपने में नहीं है, सदैव और सर्वत्र नहीं है, सरकार सर्वस्था में, ऐसा जो नहीं है उसकी याद आने पर मनुष्य के जीवन में अभाव और निरक्षता उपजती है। जो प्राप्त नहीं है, मौजूद नहीं है, अपने में नहीं है, उसकी याद अगर आएगी तो अपने में अभाव भरेगा। क्या करें, वो कब मिलेगा, कहाँ है, कैसा है? जो अपना नहीं है उसकी याद का ये फल होता है। और परमात्मा जो सभी का अपना है, और सभी में नित्य निरंतर विद्यमान है, उसको जब आदमी पसंद कर लेता है और उसकी याद जब आती है तो बड़ा चमत्कार होता है ईश्वर विश्वासी के व्यक्तित्व में। यह तो मनोविज्ञान की भाषा है, मैं व्यक्तित्व बोल रही हूँ। और दूसरी भाषा बोलूँ तो कहेंगे कि उसका बड़ा चमत्कारपूर्ण प्रभाव होता है हमारे आपके अहम में। क्या होता है कि जो नित्य विद्यमान है उसकी उसको जब पसंद किया जाता है, उसकी पसंदगी से आत्मीयता के संबंध से जब उसकी स्मृति जागृत होती है, जो नित्य विद्यमान है उसकी याद आने मात्र से, उसकी उपस्थिति से जीवन भरने लगता है। तो एक तो है अप्राप्त, और उसकी याद आई तो अपने में सीमापन आ गया। और एक है नित्य विद्यमान, भीतर बाहर सब तरफ हर तरह से भरपूर। तो उसकी याद आ गई तो उसकी याद आने मात्र से जीवन भरने लगता है, अभाव मिटने लगता है, सरसता बढ़ने लगती है। और वो रस, क्योंकि जीवन रस है, अविनाशी रस है, हमारी अपनी आवश्यकता के अनुरूप है, इसलिए उस रस की वृद्धि से शेष सबकी विस्मृति हो जाती है। महाराज जी ने एक जगह पर एक वाक्य लिखा है, बड़ा अच्छा। एक दिन हम लोग विवेचन कर रहे थे कि संसार के साथ रहने पर भगवान की याद आती है, और भगवान के साथ रहने पर संसार को भूल जाता है आदमी। तो ऐसा तो उसका सहज एक प्रभाव बताया, बहुत बहुत सच्ची बात है और अनुभव करने योग्य बात है। जिन अनुभवी जनों ने अनुभव किया उन्होंने अपना इसी प्रकार का अनुभव बताया है। तो बीच में एक भाई ने प्रश्न कर दिया कि परमात्मा को पसंद करने में और उनको अपना मानने में और उनकी स्मृति में रहने में जो हमारे पुराने संस्कार हैं वे बाधा डालते हैं। तो इस पर प्रश्नोत्तर हो रहा है। महाराज जी ने कहा कि ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, संस्कार बाधा नहीं डाल सकते हैं। पुराने किए कराए का जो निशान सब बन जाता है, स्नायु में ट्रेस बन जाते हैं, मेमोरी ट्रेस सब बन जाते हैं, भोगे हुए सुखों का प्रभाव, अतृप्त वासनाओं का प्रभाव, नए पुराने ये सब जो वहाँ पर अंकित हैं, तो उनका रिवाइवल होता रहता है, उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार वे सामने आते रहते हैं इस प्रलोभन में कि पुनः उसी सुख को दोहराया जाए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर कोई पुराना संस्कार भूले हुए सुख के प्रभाव से जो राग अंकित हो गया है वो अगर तुम्हारे सामने आ भी जाए, तो अगर तुम उसका समर्थन नहीं करोगे तो जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ेगा। और उदाहरण के लिए बता दिया कि जैसे चाय पीने की आदत है, बहुत मामूली लेना चाहिए, चाय पीने की आदत है और तुमको अभी नहीं पीना है, तो अगर कोई एक प्याला ला करके तुम्हारे सामने रख दे तो पीने का जो नुकसान है वो चाय को देखने से तो नहीं हो जाएगा, जी नहीं हो जाएगा। तो जैसे बाहर दिख रहा था वैसे भीतर अगर दिख गया तो घबराते क्यों हो? बाहर वाला दृश्य ही ना भीतर अंकित होता है भाई, जी अभी देख रहे हैं तो, अथवा पहले का देखा हुआ है तो, या कभी का किसी भी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से किसी प्रकार का सुख भोगा हुआ है अथवा भोगने की इच्छा रखते हैं तो उसी का चित्र बनता है, बाहर देखो अथवा भीतर देखो। तो महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई चित्र तुम्हारे मस्तिष्क में उठ के आ गया और तक सामने चेतन स्तर पर और तुम्हें दिख गया तो उसका समर्थन नहीं करोगे और उस प्रवृत्ति में पुनः अपने को नहीं लगाओगे तो वो फिर तुम्हारा कोई नुकसान कर सकता है। नुकसान तो नहीं करेगा, तो दिखेगा और उसको इनकार कर दो, उसे पकड़ो मत, उसको रखो मत संभाल करके। तो बीच बीच में भगवत भजन के बीच में, याद के बीच में अगर ऐसी कोई बात होती है तो उससे साधक समाज को घबराना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। और तीन वाक्य अभी महाराज जी ने बताए, समर्थन नहीं करोगे, हाँ नहीं भरोगे, ये कहा, और लड़ोगे नहीं उससे, ये कहा, और एक और कुछ कहा,
देखते
तो ये, हाँ तो उससे लड़ो मत और उसका समर्थन मत करो, हाँ भी मत करो और उससे संघर्ष भी मत करो, तो वो अपने आप से नाश हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। और आगे उसी में प्रश्न करने वाले लोग प्रश्न करते जा रहे हैं, स्वामी महाराज उत्तर देते जा रहे हैं। खास बात जो है वो मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया, यही वो कह रहे हैं कि बीच बीच में अगर पुरानी बातें आती हैं तो उनके आने से कोई नुकसान नहीं होता है, अगर उनको आने से रोकना चाहोगे तब नुकसान होगा, अगर उनके उठने पर उनका समर्थन करोगे फिर उस प्रवृत्ति में सम्मिलित होकर भोग जनित सुख लेना पसंद करोगे तब नुकसान होगा, और हाँ भी मत भरो और उनसे लड़ो भी मत, संघर्ष भी मत करो, तब कोई नुकसान नहीं हो सकता है। और उनके डर से डरना भी नहीं चाहिए। अब जब उन प्रवृत्तियों को अपने को दोहराना ही नहीं है तो जो उनका मेमोरी स्ट्रेस पड़ा हुआ है स्नायु मंडल में वो अपने आप से आ भी जाएगा चेतन स्तर पर और अपने आप से खत्म भी हो जाएगा। आगे फिर उसी में कह रहे हैं कि कभी कभी साधक जन से भूल होती है, क्या भूल होती है कि पुरानी जो मेरी पसंदगी थी सुख भोग की, उस पसंदगी के कारण से अनेक प्रकार के राग अंकित हो गए और जब शांति काल में वे उठ करके मस्तिष्क में आते हैं और मन में हलचल मालूम होती है, तरह तरह के विकारों के चित्र सम्मुख आते हैं, तब क्या करता है आदमी कि अपने आप से आने वाले उन चिंतनों को करने वाले चिंतन से दबा करके मिटा के उसको खत्म करना चाहता है। तो व्यर्थ चिंतन उठता है मन में तो कोई कोई साधक उसको सार्थक चिंतन से दबा देने की चेष्टा करते हैं कि संसार की याद आ रही है तो जल्दी जल्दी भगवान का नाम लेकर के संसार की याद को दबा दो। यह है मनोवैज्ञानिक तथ्य के विरुद्ध बात है। ये महाराज जी ने कहा कि होने वाली क्रिया को किसी करने वाली क्रिया से मिटाना चाहते हो तो ये संभव नहीं है। बिना चाहे बिना किए अपने आप व्यर्थ चिंतन उपज रहा है तो अपने आप जो उपज रहा है उसको करने वाले चिंतन से तुम दबा सकते हो थोड़ी देर के लिए, अल्पकाल के लिए, लेकिन मिटा नहीं सकते। ये चर्चा चल रही है तो होना क्या चाहिए, तो होना तो चाहिए था उल्टा। कौन सी बात होनी चाहिए थी कि सत्य की स्वीकृति के आधार पर, स्वधर्म के पालन के आधार पर, प्रभु की पसंदगी और उनके प्रेम की अभिलाषा के आधार पर, उनसे माने हुए आत्मीय संबंध के आधार पर, उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनकी याद स्वतः आनी चाहिए थी। और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया आपको कि उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनकी याद आने मात्र से उसमें इतनी सजीवता और इतनी सरसता होती है कि उस रस के प्रभाव में पहले के सब जमे हुए राग और विकार खत्म हो जाते हैं, हो जाती है। तो होना चाहिए था स्वभाव से ये कि हमने सत्संग किया होता, सत्य को स्वीकार किया होता, स्वधर्म का पालन किया होता, तो आज जिनको याद करने पर भी याद नहीं आता है उनकी स्मृति स्वतः जागृत हो गई होती। स्वभाव से ये होना चाहिए था, लेकिन भूल के परिणाम से क्या हो गया कि मैंने भूल काल में वस्तुओं को महत्व दिया, व्यक्तियों को महत्व दिया और दृश्य के संयोग से सुख भोगना पसंद किया, उनके प्रभाव से अनेक राग अंकित हो गए, तो उनका उपजना, उनका चेतन स्तर पर आना, उनके कारण से मस्तिष्क में हलचल मचना, ये मालूम होता है कि स्वाभाविक हो गया है ये भूल का परिणाम। तो क्या करना चाहिए, भूतकाल में जो हो गया उसको पकड़ के बैठे मत रहो, भूतकाल कैसे भी जीता हो, अब वर्तमान में आगे से किसी प्रकार के सुखभोग की प्रवृत्ति में अपने को शामिल नहीं होना है। तो क्या होगा, फिर नया कोई राग उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो सदा सदा से अपना है उसको अपनेपन को स्वीकार करना चाहिए। और पसंदगी की बात ज्यादा जोरदार बताई महाराज जी ने। फिर क्या होता है कि ईश्वर विश्वास के साधकों में एक संदेह हो रहता है, परमात्मा दिखाई तो देते नहीं है, समझ में आता नहीं है, जान पहचान कभी हुई नहीं, प्रमाण कुछ मिलता नहीं, तो उनको पसंद कैसे करें। तो पसंदगी की बात और उनसे आत्मीय संबंध स्वीकार करने की बात और उनके होकर रहने की बात, उनके प्रेम को ही जीवन मानने की बात, यह है तो बहुत आवश्यक। इसके बिना विश्वास करके साधक के जीवन में ईश्वर विश्वास सजीव नहीं होता है, इसकी बहुत जरूरत। लेकिन कहने लग जाता है आदमी कि कैसे करें कैसे करें। तो एक दिन की चर्चा है, समझी महाराज का कुछ लिखा हुआ वाक्य मैं आप लोगों को सुना रही थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि परमात्मा है और उससे मेरा नीचे संबंध है। इन वाक्यों को सुनने के लिए कितनी तैयारी चाहिए, कितनी भूमिका चाहिए अपने जीवन में। और तब उसने उन्होंने बताया कि इसकी भूमिका में क्या होना चाहिए, सारा संसार अपने को दुख रूप दिखाई देना चाहिए। सजग व्यक्ति जो होते हैं वे केवल व्यक्तिगत दुख तक ही सीमा नहीं रखते हैं, वो जहां भी कहीं दुख दिखाई देता हो वो सब दुख को सामूहिक रूप से ग्रहण करके और अर्थ निकालते हैं। तो जहां भी कहीं निर्माण परिवर्तन विनाश का क्रम चल रहा है, काल की अग्नि में सब जल रहा है, ऐसा सचेत महापुरुषों ने जिन्होंने अनुभव किया, जिनको सारा संसार दुखरूप दिखाई दिया, ऐसी जिनकी तैयारी है उनको यह सुनने का अधिकार है कि केवल उसी की सत्ता है और केवल उसी से मेरा नित्य संबंध है। तो सुनते तो हम सभी हैं, आरंभ तो हम सभी करते हैं, लेकिन एक सुनना ऐसा होता है कि वो भी अविनाशी परमात्मा को बिना देखे बिना जाने भी स्वीकार कर लेता है, और जो अपनी असमर्थता से अत्यंत पीड़ित हो गया है वह भी सुने हुए सर्वसमर्थ परमात्मा को अपना कहकर, अपना हितैषी कहकर, अपना संबंधी कहकर, अपना मित्र साथी कहकर स्वीकार कर लेता है। तो कुछ पृष्ठभूमि में विशेषता होनी चाहिए कि जिस पर यह स्वीकृति सजीव हो जाती है, और इसकी सजीवता में बड़ी विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है कि मैं जो इस क्षण में यहाँ पर बैठकर आप सभी भाई बहनों से बातें कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहने सुनने की क्रियाएं चल रही है, लेकिन इसी समय में, इसी काल में, इसी स्थान पर अंतर्यामी रूप से भीतर बाहर रहकर महात्मा विद्यमान तो है, लेकिन नित्य विद्यमान उसकी विद्यमानता का अनुभव अपने लोगों को नहीं हो रहा है। तो बहुत प्रकार की चर्चा चल रही है। स्वामी जी महाराज ने किसी सत्संग का प्रसंग एक बार सुनाया, तो सुनाया कि एक बड़े महात्मा परमात्मा के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे थे, टेप में है, उस दिन हम लोगों ने सुना था, बता रहे थे परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, और ऐसी सब बातें हो रही थी। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि अरे भाई, जो नित्य विद्यमान है उसका वर्णन करोगे कि उससे मिलोगे? मिलना चाहिए ना। जो नित्य विद्यमान है उसका चिंतन करोगे कि उसको प्यार करोगे? चिंतन तो उसका करो जो अप्राप्त है, भाई कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उसका चिंतन क्या करोगे भाई? जो नित्य विद्यमान है उसको तो प्यार करना है, उसका चिंतन क्या करना है? और जो सर्व काल में सर्वत्र विद्यमान है तो उसको ढूंढने जाओगे? ढूंढने जाने की तो बात नहीं है, तो उसका वर्णन करोगे कि उससे मिलोगे? कोई अपना परम मित्र बहुत दिनों के बाद कभी सामने आ जाए, तो आ जाएगा तो प्रेम पूर्वक उससे मिलिएगा कि उसके बारे में सोचिएगा कि वो ऐसा है, ऐसा है, कैसा है, कैसा है? तो वर्णन तो तब तक हो सकता है कि जब तक मिलने वाला न हो तो सोचते रहो ऐसा है, ऐसा है, कैसा है। तो बड़ी आवश्यक बात यह है कि उनकी सत्ता की स्वीकृति, और वो भी अधूरा ही रह जाता है केवल सत्ता की स्वीकृति मात्र से। यह बात तो मैं अपने द्वारा अपने उदाहरण से अच्छी तरह से जानती हूँ, आप भी इसको अनुभव कर सकेंगे कि केवल सत्ता स्वीकृति मात्र से काम नहीं बनता है। वो है, और भले ही उसकी महिमा तो जानो अथवा न जानो, है और अपना है। तो सत्ता की भी स्वीकृति होगी और नित्य संबंध की भी स्वीकृति होगी। तो इस स्वीकृति का सजीव परिणाम अपने लोगों के जीवन पर होना चाहिए, और वो जब होगा तो चिंतन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसकी याद आएगी। और जो सत्य है वह रस रूप भी है। हमारे मस्तिष्क की जो विकृत दशा है, ये विकृत दशा मैं कहती हूँ, क्यों कहती हूँ कि जो वस्तुएं कभी भी किसी को संतुष्ट कर नहीं सकती, उन वस्तुओं को महत्व देना और उनके बारे में सोचना, तो विकृति ही कही जाएगी। स्वाभाविक का क्या कहा जाएगा, जिसकी याद मात्र में सारी सृष्टि डूब जाती है, वो तो दूर मालूम होता है, कठिन मालूम होता है, और जिसको याद कर करके, जिसका चिंतन कर करके अनेक जन्म बर्बाद कर दिए, फिर भी उसी के पीछे पड़े रहो, तो ये नॉर्मलिटी तो नहीं है, तो विकृति मालूम होती है। तो इस तरह की बातें जो है जीवन में, वो अपनी भूल से उत्पन्न हो गई है। ये भूल का ही परिणाम है, यह स्वाभाविकता नहीं है। स्वाभाविकता ऐसी नहीं होती कि जो आपको अप्रिय लगे, जो आपको पराधीन बना दे, जो आपको असमर्थ बना दे, जो जीवन में नीरसता को भर दे, और उसी के परिणाम स्वरूप ये चित्त की और मन की चंचलता, अस्वस्थता, दुर्बलता तो पैदा होती रहती है। तो संत ने इसका परामर्श दिया कि अपनी भूल हम लोग निकाले। भूल क्या है कि जिस संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, जो तुम्हारे पास तक पहुंच ही नहीं सकता, उसको महत्व मत दो। जब तक दिखाई देता है तब तक उसकी सेवा करो, उसका भला मनाओ। दिखता है यह भी एक एक अस्वाभाविक दशा ही है। क्यों? क्योंकि मुझमें राग है तब तक दिख रहा है उसका, जब तक मुझमें संकल्प है तब तक दिख रहा है। तो ये साधन काल की बात है कि दिखाई दे तो उसे अपने लिए न मानना, अपना न मानना, और फिर भी उसके प्रति सद्भाव रखना और सेवा करना। तो इससे तो पुराना जमा हुआ राग मिटेगा, और जो सदा सदा से है उसको पसंद करना, उसको अपना मानना, तो उसकी स्मृति जागृत होगी। तो राग की निवृत्ति से शांति मिल जाती है, और भगवत स्मृति की जागृति से रस की अभिव्यक्ति हो जाती है। फिर साधक को कुछ भी करना शेष नहीं। ऐसा यह एक विवेचन है। भूल हो जाती है हम लोगों से। एक जगह पर महाराज जी ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है, उसमें पढ़ रही थी मैं, ऐसे प्रवचन के बीच में कहीं से मैंने नोट कर लिया होगा, हमारे पास रखा हुआ है। तो कई वाक्य थे, अपने लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, याद रखने से काफी सहायता मिलेगी। एक हिस्सा है, जो पूर्ण है उसी में प्रेम प्रवाहित होता है, जो अचाह है जिसमें भोग और मोक्ष की चाह नहीं है उसी में प्रेम ठहरता है। प्रेमियों में जो प्रेम भासता है वह पूर्ण के प्रेम की छाया है। मनुष्य अचाह होने के कारण अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण के प्रेम का पात्र बन जाता है, तभी उस पर पूर्ण के प्रेम की छाया पड़ती है। प्रेमी अर्थात जिसके जीवन में अपना सुख न हो, जहाँ अपने सुख की गंध नहीं वहाँ दुख कहाँ से सताएगा। जो अचाह है जिसमें भोग और मोक्ष की चाह नहीं है उसी में प्रेम ठहरता है। और आगे बताया कि प्रेमियों की भाषा में चाहने वाले को चाहना पशुता है। प्रेमियों की भाषा में चाहने वाले को चाहना पशुता है। अब जिस समय यह वाक्य मेरी दृष्टि में आया तो एकदम ऐसा लगा कि भटकने वाले सब इसी पॉइंट पर अटके हुए हैं। चाहने वाले को चाहना, जिसमें अपूर्णता है, जिसमें कामनाएं हैं, जो खुद ही कुछ चाहता है, उसको अगर मैं पसंद करूं तो यह पशुता है। ये उनकी भाषा है भाई, अब उनको कौन मना करे, वो तो कह ही सकते हैं। असली बात। तो अब ऐसा सोच करके देखिए, ऐसा सोच करके देखिए कि विश्वास तो हम लोगों ने पसंद किया, जो विश्वास सदा के लिए निभ नहीं सकता उसकी जगह पर ईश्वर विश्वास को हम लोगों ने पसंद किया, और चाहते हैं कि मन की चंचलता और चित्त की विकृतियां सब मिट जाएं और वहां पर केवल ईश्वर का ध्यान रह जाए, उन्हीं की याद रह जाए, उन्हीं के प्रति प्रियता रह जाए। तो महाराज जी सलाह देते हैं कि अगर ऐसा तुम पसंद करते हो तो पुरुषार्थ करो, स्वधर्म का पालन करो, और उस रूप में क्या करना है कि भाई और कुछ पसंद करने के लायक नहीं है, और किसी से जीवन की पूर्ति नहीं होती है, और बिना किसी आधार के अपने से रहा मिल जाता है। तो संत जनों की वाणी सुनकर, गुरु के वाक्य सुनकर, ग्रंथ के वाक्य पढ़कर, उस बिना देखे बिना जाने अनंत परमात्मा को अपने जीवन का आधार बनाना पसंद करें। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अहम रूपी अणु में अपने को परिवर्तित करके वस्तुओं की आसक्ति की जगह पर भगवत अनुराग में परिवर्तित होने की क्षमता उसमें है और वो क्षमता काम करती रहती है। आरंभ कहाँ से होता है? उस जीवन की पसंदगी से। सजीवता कैसे आती है? उसके विरुद्ध जो बातें हैं उनको छोड़ देने से। बस इतनी सी बात है। अब जिसको जैसे सूझे, जहाँ पसंद आए, जैसे फिट बैठे वैसे करो भाई। जोर जबरदस्ती करने से पुराने व्यर्थ चिंतन दब जाएंगे और ईश्वर की स्मृति जागृत हो जाएगी। ये जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविकता की बात है। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत आशा रहती है जीवन में। आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी बात है कि आप सिद्ध महापुरुष कब बनेंगे ये तो भविष्य बताए, अपनी अपनी आवश्यकता की तीव्रता बताए, लेकिन सच्ची बात ये है कि ईश्वर तत्व के समान और कुछ ठोस बात मनुष्य के जीवन में हो नहीं सकती। और उनमें विश्वास करना और उनकी आत्मीयता को स्वीकार करना, इसके समान और कोई साधना बन नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता। किस आधार पर मैं कहती हूँ कि संपूर्ण अहम बल करके प्रेम के धातु में परिवर्तित हो जाए, उसके पहले साधन के पथ पर कदम रखने मात्र से, इस स्वीकृति और विश्वास को स्वीकार करने मात्र से अपने ही भीतर में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आरंभ हो जाता है कि भगवान अपना विविध रूप धारण करके आपकी आंखों के सामने खड़े हो जाएंगे। कब खड़े हो जाएंगे, किस रूप में आएंगे, ये तो वो जाने, हमको नहीं मालूम है। लेकिन जो साधक इस विश्वास और इस आत्मीयता को धारण करेगा जीवन में, तत्काल ही एक प्रतिक्रिया तो ये होती है कि उसका अनाथपन मिट जाता है। फिर उसे किसी काल में कभी ऐसा भाषित नहीं होता कि मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ। ये हो जाता है अपने आप। ये आदमी की बहादुरी नहीं है, ये उनकी उपस्थिति का प्रभाव है। आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं था? तो पहले इसलिए नहीं था कि आपने माना नहीं था। तो न मानो तो अत्यंत रहस्यमय ऐसे छिपे हुए कि बुद्धि लगा लगा करके थक जाओ, कहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा। बड़ा विचित्र खेल है मनुष्य के जीवन का। बड़ी सुंदर रचना है, बड़ी अच्छी प्लानिंग है, योजना बड़ी सुंदर है। क्या है कि अगर आप इस बात को स्वीकार करने लग जाए तो तत्काल परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। कैसे हो गया कि जिसको आपने स्वीकार किया वह नित्य विद्यमान है, पहले से है, तो है और सत्य है, समर्थ है, सर्वज्ञ है और प्रेम स्वरूप है। और ये सब बातें अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए? दुनिया के सुख दुख के लहरों में जो डूब रहा है, उतरा रहा है, घबरा रहा है, उसको अगर ऐसा मालूम हो जाए कि मेरा कोई समर्थ नाथ है जो नित्य विद्यमान है, अभी है, इसी समय है, तो उसे धीरज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वह मेरा अपना है, उसी से मेरा नित्य संबंध है, तो अनाथपन मिटेगा कि नहीं? और उसमें दो चार दिन का समय लगेगा कि जैसे ही स्वीकार करेगा वैसे ही तत्काल होता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर की ध्यान नहीं जाता, लेकिन मुझे तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? कि पहले से परमात्मा को मान करके चलने की मेरी आदत नहीं थी, इसलिए हमारे भीतर इस तरह की कोई धारणा ही नहीं थी कि भगवत भक्ति का क्या अर्थ होता है, तो दर्शन का क्या अर्थ होता है, तो मिलना कैसा होता है, तो उनका स्वरूप कैसा होता है, इसके संबंध में हमने कुछ कभी सोचा ही नहीं था। और महाराज जी जब मिले तो उन्होंने मना ही कर दिया, जैसे मैं आपको सुना रही थी कि देखी जी परमात्मा का कार्टून मत बनाना, तुम्हारा बनाया हुआ चित्र जो होगा वो तुमको जीवन नहीं दे सकेगा, ये उस परम प्रेमास्पद उस परम कौतुकी पर छोड़ दो। वो किस रूप में पसंद करेंगे, वो कैसे तुमको संभालेंगे, तो उनकी मर्जी पर छोड़ दो, तुम मत बनाना। तो हम सावधान हो गए, हमने कहा अच्छी बात महाराज, हम नहीं बनाएंगे। तो उस आधार पर मैं कहती हूँ कि कोई रूप विशेष देखने की बात तो मेरे भीतर थी नहीं, और कल्पना करूं और चिंतन करूं और धारणा करूं, ये सब बातें मुझको स्वभाव से भी पसंद नहीं थी और महाराज जी ने ये सब सिखाया भी नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आत्मीय संबंध की स्वीकृति, सत्ता की स्वीकृति, महिमा की स्वीकृति, उनको मेरे जीवन का आधार के रूप में मुझे स्वीकार करना है। ये सारी बातें जो हैं वो तत्काल ही आम रूपी अणु में परिवर्तन आरंभ कर देती हैं। घबराए हुए आदमी को धीरज मिल जाता है, नीरसता के अभाव, नीरसता से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत ही भीतर से भरा भरा सा हृदय लगने लगता है। अपने को असमर्थ, अनाथ, असहाय समझने वाले को भीतर से ही ये बात ऐसी भर जाती है कि किसी भी क्षण में इस बात की विस्मृति नहीं होती कि मेरे नाथ हैं और वे समर्थ हैं। तो समर्थ नाथ का संरक्षण मेरे साथ है, इसकी विस्मृति कभी नहीं होती। तो आप क्या सोचते हैं, ये सब अपनी बहादुरी है कि उनकी उपस्थिति का परिणाम है? का परिणाम क्योंकि वो हैं तो मानते ही वो सब लगने लगता है अपने को, करने से नहीं होता है, जबरदस्ती करो तो नहीं बनेगा, लेकिन वो भीतर से ही ऐसे प्रकाशित होने लग जाता है, धीरज आने लग जाता है, रस बढ़ने लग जाता है, विश्वास बढ़ने लग जाता है। और कैसे कैसे करके प्रत्येक साधक को परमात्मा पूरी तरह से आश्वस्त कर देते हैं कि तुम्हारे गुरु ने जो कहा था सब ठीक बात है, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ढंग से इस बात को वे साधक को दिखा देते हैं, समझा देते हैं, और पुराने रागों की निवृत्ति के काल में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी व्यर्थ चिंतन और कभी शांति और कभी कुछ तरह तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन जो लोग करने के आधार पर चलते हैं तो उनको तो घबराहट हो जाती है कि अब क्या करें, अब तो फिर विकार आ गया, अब तो फिर संसार का चिंतन आ गया। और जो लोग उनके समर्पित होने के आधार पर चलते हैं तो उनको चिंता नहीं होती है, अब आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, अब मेरी जिम्मेदारी है नहीं। तो मैं ऐसा करती, स्वामी महाराज ने सिखाया था मुझको, तो मैं ऐसा सोचती कि हे महाराज, आपने दिया था बहुत बढ़िया बढ़िया, सब कुछ शुद्ध रूप में अच्छा से दिया था, मैंने अपनी भूल से सब बिगाड़ दिया, मन और चित्त और इंद्रियां और बुद्धि, ये सब तो समस्ती शक्तियां हैं, भौतिक तत्व हैं, ये क्रियाएं हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, तो मिलती हैं सब किसी को शुद्ध रूप में, उनके पास थोड़े अशुद्ध है, तो वो तो सब अच्छा ही अच्छा देते हैं। अपनी भूल से हमने इनको विकृत कर लिया, तो मेरी भूल से जो विकृति आ गई तो उसको अपने आप को हम निकाल ही नहीं पाते। और जिसने सर्वसमर्थ की शरण ली और उसकी कृपा शक्ति के भरोसे अपने को छोड़ दिया तो उसको निश्चिंत कहा जाती है। महाराज कभी कभी मुझे कहते कि तुम देख करके डरती हो काहे के लिए, अपना करके स्वीकार करती हो काहे के लिए, उन्हीं को कह दे देख लो महाराज तुम्हारी वस्तु है, देख लो कैसा है, और तुम जानो तुम संभालो मेरा क्या है। तो एक बार समर्पण के बाद पुनः पुनः मन की चित्त की बुद्धि की इंद्रियों की विकृति देख करके चिंतित होना, दुखी होना, भार ढोना, संभालने की चेष्टा करना बिल्कुल अपने विकास में बाधा के समान है। खूब अच्छी तरह से इस चीज को भर दिया। कभी कभी मैं परेशान हूँ कि महाराज अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तो शांत कर देते, पीठ पर हाथ फेर के, सिर पर हाथ फेर के, बस 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 चुप रहो शांत रहो कुछ मत करो, और फिर कहते कि देवकी जी ये दोनों तरफ प्रयास चलेगा ये कैसे होगा, तुमने उनसे भी कहा है संभालने के लिए और फिर अपनी ओर से लड़ती रहोगी, ये दोनों तरफ से कैसे चलेगी, तुम अपना बंद कर दो, तुम छोड़ दो। ये बड़े शक्तिशाली है, ये हर प्रकार से समर्थ है, ये सब कुछ जानते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे समर्थ स्वामी के हाथ में डाल देने के बाद फिर तुम अपनी चेष्टा क्यों आरंभ करती हो? ये दोनों तरफ नहीं चलेगा, तुम अपना बंद करो। तो इतना आराम मिलता था एकदम तत्काल, स्वामी जी महाराज के मुख से बात निकली। और बेचैनी जिसको होती है उसके लिए दवाई बहुत ही गुणकारी प्रमाणित तो हो जाती है। तो बेचैनी में, परेशानी में यह आवाज मेरे कान में पड़ती और सुनकर के मैं बिल्कुल शांत हो जाती। पता नहीं उस क्षण के बाद फिर उस तरह की परेशानी कभी मैंने अनुभव नहीं किया। इसलिए मैं इस बात को जानती हूँ। आप सभी भाई बहनों की सहायता के लिए मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि डरने की बात नहीं है, संदेह करने की बात नहीं है, उतावलेपन की बात नहीं है, सोचा नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से, सहज भाव से, सत्य की स्वीकृति से अहम में परिवर्तन होता है। सत्य की स्वीकृति से साधक के व्यक्तित्व में से साधन की अभिव्यक्ति होती है और साधन की अभिव्यक्ति से ही साध्य से अभिन्नता होती है। यह मेरी बात।